जादुई छाते के द्वारा काली पहाड़ी को पार करते हुए अमन और तारापरी पर कुछ दानवों ने आक्रमण कर दिया था। काली पहाड़ी के गुरु को एहसास हो गया था कि जिन महाराज का वंशज वहां से गुजर रहा था। सभी दानवों और राक्षसों ने उन पर हमला कर दिया था, लेकिन अमन ने उनका कड़ा मुकाबला किया। उसके बाद काली शक्तियों के गुरु के कहने पर सर्प महाराज को मजबूरन उन दोनों पर हमला करना पड़ा था, और जब वो उन्हें काली पहाड़ी पर ले जाना ही वाला था तभी तारापरी चिल्ला पड़ी थी। तारापरी की आवाज सुनकर सर्प महाराज को आभास हो गया था कि ये उस तपस्वी की बेटी है। उसके बाद तपस्वी की आत्मा ने खुद आकर सर्प महाराज को आदेश दिया कि तुम उसकी बेटी की मदद करो और उसे वो सारी शक्तियां दे दो जो मैंने तुम्हें दी थीं। सर्प महाराज ने तारापरी और अमन से माफी मांगी और तपस्वी की सारी शक्तियां तारापरी को दे दी थीं। वो शक्तियां क्या क्या थीं और कितनी शक्तिशाली थीं, ये हमें आगे पता चलेगा। सर्प महाराज से बात करते हुए अचानक अमन को समय का ख्याल आया और वो तारापरी से बोला, मिस तारा, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, हमारे पास वाकई समय नहीं है, और अभी तक हमें उस बूढ़ी माँ का पता भी नहीं मिला है, और इससे पहले कि तारापरी कुछ कहती वो सांप बीच में बोल पड़ा था। मैं भी चलता हूँ, आप लोग मुझे भी इजाज़त दीजिए, क्योंकि मुझे अभी नीचा काली पहाड़ी पर जाकर उस गुरु को कुछ न कुछ कहानी भी सुनानी पड़ेगी। तब सांप अमन की ओर देखते हुए बोला, जिन महाराज, क्या आप मेरी एक विनती स्वीकार कर सकते हैं? अमन ने एक नज़र तारापरी को देखा और फिर सर्प महाराज से बोला, हाँ बोलो, क्या चाहिए आपको? तब उस सर्प महाराज ने कहा, जिन महाराज, मैं चाहता हूँ आप अपनी एक विशेष शक्ति के द्वारा मेरे सिर पर एक प्रहार कर दें, ताकि मैं उस गुरु को बता सकूँ कि मैं आपकी असीम शक्तियों के आगे हार गया हूँ। अमन, लेकिन मैं आप पर कैसे हाथ उठा सकता हूँ जबकि आपने हमारी मदद की है? तब उस सर्प महाराज ने कहा, मैं जानता हूँ जिन महाराज, अपने दुश्मन पर प्रहार करना बहुत आसान है, लेकिन अपने दोस्तों पर प्रहार करना उतना ही मुश्किल काम है। लेकिन आपको मेरी ये विनती माननी होगी, क्योंकि अगर उस काली शक्तियों के गुरु को थोड़ा सा भी मुझ पर संदेह हुआ तो यकीनन वो मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा। जिन महाराज, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे परिवार की जान बचाने के लिए आपको मुझे घाव देना ही होगा। तब तारापरी ने अमन से कहा, अमन सर, जो भी ये सर्प महाराज कह रहे हैं वो कर दो, अभी हमारे पास सर्प महाराज को उस काली शक्तियों के गुरु से बचाने का या उनकी मदद करने का समय नहीं है। अगर हमने देर की तो मान की जान को खतरा बढ़ सकता है, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। तारापरी की बात सुनकर अमन सोच में पड़ गया और उसकी आंखों के सामने उसके जख्मी भाई का चेहरा दिखाई देने लगा था। तो फिर कुछ देर बाद अमन एक बार फिर से अपने जिन रूप में आ गया और उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों से सर्प महाराज के सिर पर वार कर दिया, जिसकी वजह से उसके सिर में खून निकलना शुरू हो गया था। अमन वापस इंसानी रूप में आया, उसने देखा इस सर्प के माथे और नाक मुंह से खून निकल आया था। तब वो सर्प महाराज मुस्कुरा रहा था और अमन की ओर दोनों हाथ जोड़कर बोला था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन महाराज। अमन दया की दृष्टि से उस सर्प को देखने लगा था। तब अमन ने तारापरी से कहा था, अब चले? अमन की बात सुनकर तारापरी ने हाँ में सिर हिला दिया था और जाने से पहले तारापरी ने उस सर्प महाराज से कहा, हे सर्प महाराज, आपने हमारी बहुत मदद की है, इतनी मदद तो शायद कोई ही किसी की कर पाए, और हाँ जिन महाराज, मैं आपसे वादा करती हूँ, उचित समय आने पर मैं वापस जरूर आऊंगी और उस काली शक्तियों के गुरु से आपको, आपकी रानी और प्रजा के समेत उस काली पहाड़ी से बाहर निकालूंगी। ऐसा कहकर तारापरी और अमन उस जादुई छाते के द्वारा वहां से उड़कर आगे की ओर बढ़ने लगे थे। अमन तारापरी की ओर गर्व से देख रहा था। अमन को अपनी तरफ इस तरह से देखता देख तारापरी, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तब अमन, मुझे तुम पर गर्व है, जिस तरह से तुमने उस सर्प महाराज को उनकी मदद करने का आश्वासन दिया वो मुझे काफी अच्छा लगा था। तब तारापरी, आपने देखा नहीं, उस सर्प महाराज ने हमारी कितनी मदद की, हमें उन सब दानवों से बचाया और झरने की ओर जाने का रास्ता बताया, तो बदले में इतना तो बनता है। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये तपस्वी महाराज कौन है? एक बार मान सिंह राठौर जी ठीक हो जाए उसके बाद मुझे ये जानना है कि आखिर ये तपस्वी महाराज कौन है, तारापरी ने अमन से कहा। तब अमन, हो सकता है किसी तपस्वी की तुम्हारी जैसी कोई बेटी हो और गलती से उस सर्प ने तुम्हें शक्तियां दे दी हो। तब तारापरी, अब चाहे कुछ भी हो, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि अब मेरे पास भी शक्तियां हैं जैसे आप लोगों के पास हैं, अब तो मैं खुद भी अपनी रक्षा कर सकती हूँ और आप लोगों की भी। जैसे ही तारापरी ने ये कहा, अमन चिढ़कर रह गया और बोला, आपको हमारी रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी ही रक्षा कर लीजिएगा, वही काफी है। और अभी उन दोनों की नोकझोंक चल ही रही थी कि तभी अचानक वो जादुई छाता उड़ते उड़ते रुक गया। तब अमन और तारापरी हैरानी से उसे देखने लगे और जब उन्होंने नीचे की ओर देखा तो वे दोनों भी चौंक गए, क्योंकि आगे एक ऐसा मोड़ था जिसके अंदर से चार रास्ते निकले हुए थे। अब अमन ये सोचने लगा था कि हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए जहां वो झरना हमें मिलेगा, क्योंकि चारों के चारों रास्ते बिल्कुल एक समान थे, किसी भी रास्ते में कोई भी फर्क नहीं था। अमन, तारापरी, हमें किस ओर जाना चाहिए जो वो जादुई झरना हमें मिले? तब तारा परी को न जाने अचानक क्या हुआ था और उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगी थीं और जल्दी ही उसे एक विजुअल दिखाई देने लगा था जिसमें उसे उस बूढ़ी माँ के पास जाने का सही रास्ता दिखाई दिया था। तारा परी ने एकदम से अपनी आंखें खोल ली थीं और आंखें खोलते ही उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई थी। अमन, तारा परी के कंधों पर हाथ रखते हुए, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना? तब तारा परी ने कहा, अमन सर, मुझे लगता है हमें ये जो सामने की ओर दो रास्ते जा रहे हैं उनमें से दाहिने हाथ वाले रास्ते की ओर जाना चाहिए। तब अमन, लेकिन तुम उस रास्ते को लेकर इतना श्योर कैसे हो? हो सकता है वो गलत रास्ता हो। तब तारा परी, मैंने आपसे कहा ना, वही सही रास्ता है। शायद उस सर्प महाराज ने जो शक्ति दी थी उन्हीं की वजह से मुझे सही रास्ते का पता चला। अमन इस बार तारा परी की बात पर यकीन करने के लिए तैयार हो गया था क्योंकि सर्प महाराज को तारा को शक्ति देते हुए अमन ने अपनी आंखों से देखा था, तो हो सकता है तारा की बातों में सच्चाई हो। ये सोचकर अमन ने छाते को तारा परी के बताए हुए रास्ते की ओर चलने का इशारा किया और देखते ही देखते छाता उस ओर चलने लगा था। तारा परी खुश हो गई थी ये सोचकर कि अमन ने उसकी बात मान ली थी। वहीं दूसरी ओर करिश्मा जी पल पल तेजी से बीतते हुए समय को देख रही थी क्योंकि घड़ी का बढ़ता हुआ एक एक मिनट उसके बेटे को मौत के करीब ले जा रहा था। करिश्मा जी तारा से कहीं ना कहीं नाराज हो गई थी। उसे ये लगने लगा था कि आज उसके बेटे की जो भी हालत है वो तारा की वजह से ही है। तारा को तिलिस्मी कड़े से उसके बेटे पर वार नहीं करना चाहिए था और फिर वो सोच रही थी कि काश मैंने वो कड़ा उसे दिया ही नहीं होता। करिश्मा जी के मन में एक के बाद एक ख्यालात और सवाल आ रहे थे और वो बार बार नम आंखों से अपने बेटे को देख रही थी। कहां वो कल सुबह अपने बेटे को दूल्हा बने हुए देखना चाहती थी और कहां अब उसका बेटा जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा था। करिश्मा जी मन ही मन, तारा, अगर आज मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी।
वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों के मालिक अमित मलिका के साथ एक हसीन पल में खोए हुए थे। मलिका ने जान जान एक कर रखी थी काली शक्तियों के मालिक को खुश करने के लिए और जब वे दोनों आनंद के सागर में गोते लगा रहे थे ठीक उसी वक्त अमित के जिस्म का एक हिस्सा कमजोर लगने लगा था क्योंकि अमित ने छिपकली रज्जू को अपने जिस्म के एक हिस्से की शक्ति देकर जिंदा किया था और चूंकि प्रेमा के द्वारा उस छिपकली का अंत हो गया था तो उसी वक्त अमित के जिस्म का एक हिस्सा कमजोर हो गया था और उसे एहसास हो आया था कि जरूर उसकी काली शक्ति रज्जू की जान खतरे में है। सो वो तभी मलिका के ऊपर से हटा और अपने उस लाल रंग के कमरे में गया जहां पर काला पानी रखा हुआ था। उसी वक्त उसने एक मंत्र पढ़कर उस पानी में फूंका था और जैसे ही वो मंत्र उस पानी पर गया उसी पल उस पानी का रंग बदलने लगा था और उसने रज्जू की कटी हुई पूंछ और उसका राख होना दिखाई देने लगा था। रज्जू को राख होता देख अमित का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था और वो जोर से दहाड़ा था, अमन, न न न न न। अमित को इस तरह से चिल्लाता देख मलिका केवल एक पतली सी चादर अपने नग्न जिस्म पर लपेटकर वहां आ गई थी और अमित के कंधे पर हाथ रखकर बोली थी, क्या हुआ मालिक, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? तब अमित ने उसे बताया कि रज्जू को अमन ने भस्म कर दिया है, मुझे जाना होगा और देखना होगा आखिर हुआ क्या था उसके साथ। ऐसा कहकर और वो उसी पल उस जंगल के लिए निकल गया और मलिका गुस्से से दांत भींचती हुई सोच में लगी थी। शिट, मैंने तो सोचा था वो छिपकली जरूर तारा को अमन के रास्ते से हटा देगी, फिर मेरा काम और आसान हो जाएगा, लेकिन वो बेवकूफ छिपकली एक दिन भी उस जिन का मुकाबला नहीं कर पाई। छी ही 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 ही। मलिका ने गुस्से से अपने नग्न जिस्म को देखा और एक बार फिर पवित्र अग्नि में जाकर बैठ गई और खुद को सजा देने लगी थी। दोस्तों, तारा परी की कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।